ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवमांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान् तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर दारुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने प्रचोदिता जे न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भूतकिलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम् भूर्तेर्महत भी यैमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्तेर्गुणानशो रषषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति सोमवारीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम प्रति सोमवार को श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से हम कलयुग के सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए स्कंद पुराण में बहुत ही सुंदर कहा गया है, काल व्याल मुखाग्रासम त्रास निर्णा शहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए प्रदान किया, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को किरेण कहा जाता है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, किरण निकलती है, वैसे ही व्यास देव जी से जो किरण निकले हैं वह सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इस संसार के लोगों को इसलिए प्रदान किया क्योंकि इस भौतिक जगत में, इस संसार में काल व्याल मुखाग्रास, इस संसार में काल नामक तत्व किसी को छोड़ता नहीं है। जातस यही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म है उसे मरना पड़ता है। इस संसार में सभी लोग एक ना एक दिन मरने वाले हैं, मरने से कोई नहीं बच सकता है। मरने से कई कई उपाय व्यक्ति करे फिर भी मृत्यु से नहीं बच सकता है, और इसीलिए इस भौतिक जगत को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। यहाँ पर सब लोग काल के मुख में है और धीरे धीरे करके उस काल के मुख की ओर बढ़ रहे हैं। न चाहते हुए भी वह काल एक ना एक दिन आएगा और इस संसार के जीव को, प्राणियों को ग्रस लेता है। परंतु यदि कोई उस काल से बचना चाहते हैं, मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से मृत्यु रूपी काल से बच सकते हैं। तो ये मृत्यु से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है और ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रति सोमवार को इसी श्रीमद् भागवतम श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम में सप्तम अध्याय में, सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय से प्रहलाद महाराज की कथा प्रारंभ होती है। आगे हम लोगों ने प्रहलाद महाराज के बारे में बहुत बहुत श्रवण किया, किस प्रकार से कयाधु के गर्भ से प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ और कयाधु के गर्भ में ही, कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, और गर्भ में ही नारद मुनि के उपदेश द्वारा प्रहलाद महाराज भक्त बने। यद्यपि प्रहलाद महाराज के पिता बहुत बड़े असुर थे, महासम्राट थे, सभी देवियों के, सभी असुरों के वे राजा थे, और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके लगभग तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लिया था और तीनों लोकों का भगवान बनकर बैठा था। तो ऐसा हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद, जो महाभागवत भगवान का शुद्ध भक्त निकला और भगवान का भजन करने के कारण हिरण्यकश्यपु प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत बहुत प्रयास किया, परंतु भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज को एक आंच तक नहीं आई। हम लोगों ने सुना विष्णु पुराण से यह कथा बृहद रूप से हम लोगों ने सुनी कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज को मारने के बहुत बहुत प्रयास किए गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। यद्यपि प्रहलाद को मारने वाले मर गए, प्रहलाद को मारने वाले थक जाते थे, मर जाते थे, परंतु प्रहलाद को एक आंच तक नहीं आई। ये भगवान की कृपा है। भगवान की शरण में यदि हम बैठते हैं तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। तो प्रहलाद महाराज पूर्ण भगवान के शरणागत थे, भगवान का भजन करते थे और इसीलिए 5 साल का बालक है फिर भी बड़े से बड़े लोग भी जब प्रहलाद का नाम लेते हैं तो प्रहलाद महाराज कहते हैं। जो बड़ा होता है उसे अक्सर महाराज कहते हैं, परंतु 5 साल का बालक और बड़े से बड़ा व्यक्ति, यहां तक उनके गुरु नारद मुनि भी उसे प्रहलाद महाराज कह के बुलाते हैं। भगवान के भजन में यह ताकत। भगवान का भजन कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे मान और यश मिलता है। खैर, तो प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त महाभागवत और हिरण्यक इस सप्तम स्कंद के कौन सा अध्याय है, ये छठा, यहां पर 14 है। तो सप्तम स्कंद के 5वें अध्याय में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजा गया और ये अंतिम चांस, अंतिम मौका शंड और अमर को दिया कि प्रहलाद को लेकर जाओ और कैसे भी करके उसे समझाओ कि भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़े और मुझ हिरण्यकश्यपु की भक्ति करे। तो प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में लेकर गए हैं, शंड और अमरक प्रहलाद महाराज को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाते पढ़ाते हमें भी स्कूल और कॉलेज में आता था, एक दिन में 6 या 7 पीरियड होते हैं आधा पौने घंटे के, तो कभी कभी प्रॉक्सी पीरियड और फ्री पीरियड भी होता है। तो शंड और अमरक कुछ घंटों के लिए गुरुकुल को छोड़कर अपना काम करने के लिए बाहर चले गए और यहाँ पर सभी गुरुकुल के बालकों को कह दिया कि आपको फ्री पीरियड मिल गया है, आप खेल सकते हो। तो शंड और अमर गुरुजी चले गए हैं और यहाँ पर सभी बालक, 4-5 साल की उम्र के बालक थे, सभी बालक अपनी अपनी धुन की में खेलने लगे, परंतु प्रहलाद महाराज का मन खेलने में नहीं लगता था। यद्यपि वे 5 साल के थे और 5 साल का बालक का मन पूरा पूरा खेलने में होता है, परंतु प्रहलाद महाराज का मन खेल कूद में नहीं लगता था, उनका मन तो निरंतर भगवान के स्मरण में बीतता था। तो प्रहलाद महाराज ने जब देखा कि यह सब बालक, यह सब असुरों के पुत्र, यह सुंदर समय मिला है, यह अच्छा समय खेलने में बिता रहे हैं, तो तुरंत प्रहलाद महाराज के हृदय में करुणा आ गई और करुणा से प्रहलाद महाराज असुर बालकों को, अपने सहपाठियों को उपदेश देना प्रारंभ किए। प्रहलाद महाराज को हृदय में बहुत दुख हुआ। वास्तव में भगवान की यदि कोई भक्ति करते हैं तो उनका हृदय बहुत नरम हो जाता है, दूसरे के दुख को देखकर भगवान के भक्त दुखी होते हैं। जब भगवान के भक्त देखते हैं कि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं और माया में फंसकर केवल दुख भोगत रहे हैं, तब भगवान के भक्त के हृदय में यह करुणा उठती है कि यह लोगों को कृष्ण विषयक गीता और भागवत का ज्ञान दिया जाए, ताकि यह माया से मुक्त होकर यह परम सुख को प्राप्त करे। तो प्रहलाद महाराज उपदेश देना चाहे और उपदेश देने के पीछे एक ही कारण था, करुणा। संसार में कुछ कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जो करुणा से उपदेश नहीं देते हैं। कभी कभी कुछ वक्ता मान और प्रतिष्ठा के लिए उपदेश देते हैं और अपना उपदेश इस प्रकार से तैयार करते हैं ताकि लोग उसकी प्रशंसा करें। वास्तव में इस प्रकार से मान और प्रतिष्ठा से यदि कोई उपदेश देना चाहता है तो वो उपदेश सुनने वाले के जीवन में कुछ असर नहीं कर सकता। उपदेश करुणा से होना चाहिए। प्रहलाद महाराज करुणा से उपदेश देना प्रारंभ किए। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी के लिए भी यह शब्द आया है। जब सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाना प्रारंभ किए, जैसे हम यहां पर कथा करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं, तो उस नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी भी जब कथा प्रारंभ किए तो वे मंगलाचरण किए, और मंगलाचरण में सूत सुखदेव गोस्वामी के लिए उन्होंने एक श्लोक का उच्चारण किया। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति सार मेकम अध्यात्म दीप मतिति तिष्ठताम तमोंधम संसारिणाम यह करुण याह पुराण गुह्यम तम व्यास सुन मुपयामी गुरु मुनीनाम। सुखदेव गोस्वामी संसारिणाम करुण याह पुराण गुह्यम। सुखदेव गोस्वामी ने पुराण भागवत पुराण का गुह्य ज्ञान संसार वालों को अपनी करुणा से दिया। अपने हृदय में करुणा उमड़ पड़ी संसार के लोगों के लिए, तब जाकर सुखदेव गोस्वामी ने यह ज्ञान दिया। तो उपदेश देना चाहिए परंतु करुणा से देना चाहिए। हृदय द्रवित हो जाना चाहिए और हृदय से शब्द निकलने चाहिए। तो प्रहलाद महाराज उपदेश देना चाहे और वहां पर उस गुरुकुल में एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे क्या कहते हैं बैठने का चबूतरा बनाते हैं। तो प्रहलाद महाराज उस चबूतरे के ऊपर चढ़ गए और खड़े होकर अपने सभी सहपाठी अपने साथ पढ़ने वाले बालकों को बुलाए कि हे मेरे मित्रों, हे असुर पुत्रों, हे असुर बालकों, यहां पर आओ। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा कि यहां पर आओ, मैं तुम्हें उपदेश देना चाहता हूं, तुरंत सभी बालक अपना अपना काम अपना अपना खेल कूद छोड़कर प्रहलाद महाराज के पास आ गए। क्योंकि वहां प्रहलाद महाराज के सभी मित्र प्रहलाद महाराज की बात को गंभीरता से पालन करते थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज का आचरण ऐसा था, हमने आगे यह श्रवण किया। तो सभी मित्रगण आए, सब लोग नीचे बैठे और प्रहलाद महाराज व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं और बैठकर अब सुखदेव गोस्वामी अब अध्याय बदल रहे हैं। अगले अध्याय में कह दिया प्रहलाद महाराज व्यासपीठ के ऊपर बैठे हैं और सभी बच्चे सभी असुरों के पुत्र बालक नीचे उपदेश सुनने के लिए बैठे हैं। तो छठे अध्याय पांचवें अध्याय में प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन है और इस सातवें अध्याय में प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं। छठे अध्याय में प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं और उपदेश बहुत ही सुंदर उपदेश, बिल्कुल सार गर्भित यह उपदेश। यदि कोई व्यक्ति इस उपदेश का अपने जीवन में पालन करे तो बहुत जल्द भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो आइए यह उपदेश हम आज से प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रहलाद महाराज श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, उवाच का अर्थ होता है कहा, चाहे वर्तमान हो भूतकाल हो। यहां पर सुखदेव गोस्वामी प्रहलाद उवाचा भी कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, लेकिन श्री प्रहलाद उवाचा कह रहे हैं। तो श्री प्रहलाद उवाचा कहने का भाव है, श्री प्रहलाद उवाचा कहने का तात्पर्य है कि प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त थे, और भक्त होने के नाते यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे श्री प्राप्त होती है। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ बहुत सारे होते हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदरता। यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे सुंदरता प्राप्त होती है। श्री का अर्थ होता है धन। यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे धन प्राप्त होता है। श्री का अर्थ होता है ज्ञान। श्री का अर्थ होता है यश। श्री के कई सारे अर्थ हैं। यदि कोई भगवान की भक्ति करते हैं तो उसे श्री प्राप्त होता है। धन चाहे यश, नाम होता है, वैराग्य मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में लोग धन, संपत्ति, प्रशंसा, यश बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, बहुत बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उसका यश और नाम नहीं होता है, धन नहीं प्राप्त होता है। परंतु केवल यदि कोई भगवान की भक्ति कर दे तो उसे तुरंत धन, यश, मान इत्यादि मिलने लगता है। क्यों? इसमें कौन सा तत्व, इसमें कौन सी रहस्य की बात है? तो जरा सुनिए, श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी किसकी पत्नी है? हाँ, भगवान विष्णु की। अब देखिए, यदि कोई, और लक्ष्मी जी जो है ये पतिव्रता है, अपने पति को छोड़कर एक सेकंड भी दूर नहीं जाती है। तो यदि कोई व्यक्ति विष्णु को, भगवान को न बुलाए और केवल लक्ष्मी के पीछे पड़ा रहे तो लक्ष्मी कभी भी उसके पास नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल पतिव्रता स्त्री है, अपने पति को छोड़कर कहीं नहीं जाती। तो भगवान की भक्ति न करे, भगवान विष्णु का नाम न ले और केवल श्री, धन चाहिए, ये चाहिए, मान चाहिए, ज्ञान चाहिए, इस प्रकार से वह प्राप्त करने के लिए उद्यम करे तो लक्ष्मी कभी हाथ में नहीं आती। और यदि आ भी जाए तो टिकती नहीं है, क्योंकि अपनी पत्नी, पति के अलावा वे अकेले नहीं रह सकती। लक्ष्मी जी की बात छोड़ दीजिए, संसार की साधारण पत्नी भी अपने पति को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। ये तो लक्ष्मी जी है। तो साधारण लक्ष्मी यदि हमें प्राप्त करनी हो तब भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यदि कोई लक्ष्मी को प्राप्त करना न चाहे और केवल विष्णु का भजन करे तो विष्णु जहां पर चलते हैं वहां पर पतिव्रता होने के नाते लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चलती है। इसलिए भगवान की भक्ति करने से भगवान हमारी जीवा पर आते हैं, भगवान हमारे घर आते हैं, तो भगवान के साथ साथ उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी भी आ जाती है। इसलिए धन भी यदि चाहते हैं तो भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो प्रहलाद महाराज के पास श्री, धन था, सुंदरता, ज्ञान, यश, वैराग्य इत्यादि, इसलिए श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, क्या कहा? कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मेरे मित्रों, हे असुर बालको, प्राज्ञो भागवता धर्मान आचरेत। हे मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भागवत धर्म का आचरण करे, भागवत धर्म का पालन करे। ये पहली बात प्रहलाद महाराज ने सबसे पहले अन्वय से यदि देखा जाए तो कहते हैं प्राज्ञो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे भागवत धर्म का आचरण करें। मूर्ख लोगों के लिए प्रहलाद महाराज नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति ही भगवान की भक्ति कर सकता है, मूर्ख व्यक्ति भगवान का भजन नहीं कर सकता है। संसार में अक्सर सब लोग कहते हैं ये मूर्ख है, ये पागल है, किसी को बुद्धिमान कहते हैं, परंतु वास्तव में मूर्ख, पागल और बुद्धिमान यह भगवान के स्टैंडर्ड से तय होता है, यह हमारी बुद्धि से तय नहीं होता है। और वैसे भी हमारे जीवन में भी यदि देखना हो तो हम पागल किसे कहते हैं, हम समाज में कहते हैं कि ये पागल है, तो बुद्धिमान किसे कहा जाता है यह जानने के लिए पागल की व्याख्या जाननी होगी। तो आप बता सकते हो पागल किसे कहते हैं? दूसरों से अलग रहे हैं, दूसरों से तो हम भी कभी कभी अलग रहते हैं, तो क्या हम पागल हैं? नहीं। पागल किसे कहते हैं? पागल उसे कहते हैं जो अपने बारे में नहीं जानता है, जो अपनी पहचान भूल गया है उसे पागल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। हमारे इस्कॉन में एक वृंदावन चंद्र प्रभु है, दिल्ली में, दिल्ली के मंदिर में वे भक्त हैं। तो वे जब पढ़ते थे, वे साइंस में पढ़ते थे, उनके साथ जो मित्र पढ़ता था वे दिल्ली के पागल खाने का एक डॉक्टर हुआ, दिल्ली में फेमस है पागल खाना। तो हमारे प्रभु जी वृंदावन चंद्र प्रभु को पता चला कि हमारा मित्र जो हमारे साथ पढ़ता था वे फिलहाल पागल खाने में पागलों का डॉक्टर है। तो वे उसको प्रचार करने के लिए, भक्त बनाने के लिए उस दिल्ली के पागल खाना में गए। तो जब अपने मित्र के पास गए तो मित्र पूरी हॉस्पिटल दिखा रहा था और उस हॉस्पिटल में बहुत सारे पागल थे, और हॉस्पिटल में पागलों को जैसे जेल में बांध कर रखते हैं वैसे बांध कर रखा जाता है। तो आजू बाजू में कई सारी रूम थी और रूम में ग्रिल, जाली लगी हुई थी, और ये दोनों मित्र, हमारे प्रभु जी और डॉक्टर, दोनों चलते हुए जा रहे थे। तो चलते चलते कई सारे पागल एक रूम में बैठे थे, लगभग 25 पागल बैठे होंगे। तो उस रूम से एक पागल ने उसे हमारे प्रभु जी को बुलाया, और बुलाने में भी यहां पर आइए। तो ये प्रभु जी की नजर वहां पर गई तो उन्होंने देखा कि उस पागल के उस रूम में एक चारपाई का पलंग था, उस पलंग के ऊपर पलंग और उसके ऊपर एक पलंग, तीन पलंग लगाकर उसके ऊपर एक पागल बैठा हुआ था, और 24 पागल नीचे बैठे थे, और जो ऊपर बैठा था वे हमारे प्रभु जी को अंदर बुलाया। तो प्रभु जी तो डर गए, मैं वहां जाऊंगा तो कान बिन तो नहीं काट लेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि ये काटने वाले पागल नहीं है, काटने वाले पागल को दूसरे कमरे में बंद किया है। तो हमारे प्रभु जी वहां पर गए, वहां पर जाकर कहा कि यहां पर आओ, तुम्हारा कान यहां पर लाओ। तो प्रभु जी ने कान दिया, तो वो जो पागल ऊपर बैठा था उसने हमारे प्रभु जी को कान में कहा, मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इस देश का वड़ा प्रधान हूं, और ये सब मेरी प्रजा है, और तुम भी मेरी प्रजा हो, बैठ जाओ नीचे। हमारे प्रभु जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, हम भी आपकी प्रजा हैं, लेकिन कुछ काम के लिए मैं जा रहा हूं, बाद में यहां पर आऊंगा। तो ऐसा करके हमारे प्रभु जी वहां से भागे। फिर से उसने बुलाया, यहां पर आओ। तो बुलाया, प्रभु जी गए और उन्होंने कान में कहा कि देखो, इस हॉस्पिटल में बच के रहना, ये जो सफेद कोट में जो घूम रहे हैं ना, ये जितने सफेद कोट पहने हैं ये सब लोग पागल हैं, ये सफेद कोट वाले पागलों से बचकर रहना। तो सफेद कोट वाले को वे पागल मान रहा था। तो तात्पर्य यह है, पागल का अर्थ होता है अपनी पहचान भूल जाना। ऐसा ही होता है, जब पागल हो जाता है तब सोचता है मैं इस दुनिया का बड़ा प्रधान हूं, मैं सबसे बड़ा धर्म गुरु हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य यदि अपनी पहचान भूल जाता है तो वे कौन है? पागल। तो वास्तव में हम क्या हैं? हम कौन हैं? कौन है? क्यों स्वीकार इतना कर लिए हैं? हम आत्मा है, और यदि हम हमारी पहचान यह देह के साथ देते हैं कि मैं समीर हूं या मैं मुकेश हूं, तो यदि हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं, हमारा स्वरूप है आत्मा, हम आत्मा है, और हम किसी का पति, किसी की पत्नी इत्यादि अलग अलग उपाधियां से हम अपनी पहचान देते हैं, तो वास्तव में हम पागल हैं। तो पागल उसे कहते हैं जो अपने आप को देह मानता है, और बुद्धिमान उसे कहते हैं जो अपने आप को आत्मा मानता है, और महाबुद्धिमान इसे कहते हैं कि अपने आप को आत्मा मानकर परमात्मा का भजन करता है, उसे महान बुद्धिमान कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भागवत धर्म का पालन करे। अपने आप को जो आत्मा मान रहा है, जो अपने आप को यह देह मान रहा है, उसके लिए प्रहलाद महाराज नहीं कह रहे हैं, वह तो भौतिक जीवन में फंसे रहेंगे और इस संसार में कीड़ों की तरह भोग भोगेंगे और सड़ेंगे और मरेंगे। परंतु जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वे समझ चुके हैं कि हम आत्मा हैं, उसे चाहिए कि केवल हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है न करते रहे, भागवत धर्म का पालन करें। तो ये है प्राज्ञ बुद्धिमान का अर्थ। बुद्धिमान का दूसरा अर्थ भी देते हैं कि प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भागवत धर्म का ही पालन करे। अन्य जो तपस्या, दान, योग इत्यादि, यह जो अलग अलग साधन है, यह साधनों से सर्वश्रेष्ठ साधन है भागवत धर्म। तो यह सभी साधनों को छोड़कर यदि कोई भागवत धर्म का पालन करता है तो वह प्राज्ञ है, वह बुद्धिमान है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भागवत धर्म का पालन करे। भागवत धर्म किसे कहते हैं? भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है उसे भागवत धर्म कहते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए 9 प्रकार के कार्य प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता चुके हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु इत्यादि। तो भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य। और भगवान को प्रसन्न इस संसार के सब लोग, छोटे से लेकर बड़े सब लोग कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं हमारे पास धन नहीं है, और धन नहीं होने के कारण हम मंदिर में कुछ दान नहीं दे सकते हैं। जब हमारे पास धन आ जाएगा तब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, तब हम भगवान का भजन करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुण की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपके पास धन हो न हो, चाहे आप बिल्कुल नीच कुल में भी क्यों न जन्म लिए हो, चाहे कोई चांडाल भी क्यों न हो, वह भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने का एक ही रास्ता है, वह है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भागवत धर्म का पालन हो सकता है। इसलिए सूरदास जी बहुत ही सुंदर कहे हैं, श्याम गरीब निहूं के चाहक। हे श्याम, आप तो गरीबों के भी चाहक हैं। इस संसार में लोग बड़े बड़े लोगों की संगति करते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ घूमते, ये तो सब लोग करते ही हैं। परंतु इस संसार में सबसे बड़े श्याम भगवान श्री कृष्ण हैं, और ये कृष्ण गरीब से गरीब लोगों के भी चाहक है। तो वे दृष्टांत देते हैं, दीनानाथ हमारे ठाकुर साचे प्रीति निवाहक। हमारे जो ठाकुर है, हमारे जो प्रभु है, वे दीनों के नाथ हैं और दीनों के साथ सच्ची प्रीति निभाते हैं। कैसी सच्ची प्रीति निभाते हैं? कहते हैं, कहां विदूर की जाती पाती प्रेम प्रीति के लाहक। वे कहते हैं विदुर की कहां, विदुर का कहां कुल था? विदुर बिल्कुल दासी के पुत्र थे और भगवान परम पुरुष एक द्वारका के राजा थे, परंतु फिर भी दुर्योधन को छोड़कर विदुर जी के पास जाकर साग की पत्ती खाए। तो कहां विदुर का निम्न कुल, लेकिन भगवान उस पर भी रिझ गए। क्यों? क्योंकि विदुर जी भगवान को प्रसन्न की, भगवान की भक्ति की। वे कहते हैं, कह पांडव के पर ठकुराई। पांडव के पास कौन सी ठकुराई थी? वे सारा राज्य शकुनी के छल से, दुर्योधन से हार गए थे, वनवास में थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान पांडवों का साथ दिए, यहां तक अर्जुन का रथ चलाए। क्या था पांडवों के पास? कुछ नहीं, लेकिन भक्ति करते थे और भक्ति से भगवान को प्रसन्न कर लिए। वे कहते, कहां सुदामा के धन हो। सुदामा के पास कहां धन था, लेकिन ऐसे सुदामा के साथ मित्र रखे भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है उनकी भक्ति करने से। तो भागवत धर्म का अर्थ होता है भगवान की नौ प्रकार की नवधा भक्ति है, उसे भागवत धर्म कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की नवधा भक्ति करे, और वे नवदा भक्ति इह, वे कहते इसी जन्म में करनी चाहिए। ये नहीं कि अगले जन्म में करेंगे, बाद के जन्म में नहीं, इह इसी जन्म में भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन, ये मनुष्य देह ही भजन करने के लिए अनुकूल है। वास्तव में भगवान ने यह मनुष्य देह, यह मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए ही बनाया है, और भक्ति करने के लिए बहुत अनुकूल है। परंतु दुर्भाग्य है इस संसार का, इस संसार में रहने वाले लोगों का, कि भजन करने के लिए सुलभ मनुष्य देह से भजन न करते हुए वे संसार के भोगों में फंसे रहते हैं। परंतु यह भोग भोगने के लिए मनुष्य देह नहीं है। मनुष्य देह में क्या भोग भोग सकते हैं? मनुष्य से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा भोग और सुख पशु भोगते हैं। जैसे बहुत अच्छे अच्छा खाना खाना चाहते हैं मनुष्य, आहार करना चाहते हैं, पर मनुष्य को यदि आहार करना हो तो उसे धन कमाने की आवश्यकता होती। रोज सुबह ट्रेन के चक्कर खाते हुए पसीना बहाकर धन कमाएंगे तब जाकर वे भोजन खाते हैं। परंतु कुत्ता और प्राणी भोजन खाने के लिए काम धंधा बिजनेस नहीं करते, उसे ऐसे ही सुलभ हो जाता है। मनुष्य को यदि भोग भोगना है तो उसके पीछे बहुत कष्ट, बहुत दुख उठाना पड़ता है। मनुष्य को यदि विवाह करना है, भोग करना है, तो उसके लिए कितना धन कमाओ, इतना अरेंजमेंट करो, ये करो वो करो, और तब जाकर कुछ क्षण के लिए आनंद मिलता है। परंतु वही आनंद एक पशु जब चाहे तब उठा सकता है बिना परिश्रम के। मनुष्य यदि बच्चा पैदा करना चाहे तो 9 महीने में इतना कष्ट भोगत कर 1 या 2 बच्चा पैदा कर सकते हैं, परंतु प्राणी एक साथ 10-15 बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। यह सब भोगों की दृष्टि से देखा जाए तो यह मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। नायम देहो देह भाजानु लोके कष्टान कामन अहर्त विट भोजाम। प्राणियों के तरह भोग भोगने के लिए यह जीवन नहीं है, यह जीवन तो भगवान का भजन करने के लिए मिला। इसलिए इह इसी जन्म में यह भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। तो कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ठीक है, इसी जन्म में हम भागवत धर्म का पालन करेंगे, परंतु कुछ समय जाने दीजिए, अभी फिलहाल भोग भोग लेने दीजिए, सुख आनंद प्राप्त कर लेने दीजिए, बाद में भोगेंगे। तब प्रहलाद महाराज कहते नहीं, कौमारे कौमारे आचरित प्राज्ञ, कौमार अवस्था में ही यह भागवत धर्म भक्ति करनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, क्योंकि कौमार अवस्था में ही यह भक्ति हो सकती है, बूढ़े होकर यह भजन नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो खेलने कूदने की उम्र है, ये तो कमाने की उम्र है, जब बूढ़े हो जाओगे तब भजन करो। लेकिन प्रहलाद महाराज महाभागवत कह रहे हैं कौमारे, कुमार अवस्था में, कुमार अवस्था अर्थात 5 से 10 साल की उम्र में ही भक्ति करनी चाहिए। और साधारण बुद्धि से भी यदि आप विचार करो तो कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में बुद्धि बहुत कोमल होती है, और जैसे उस बुद्धि को मोड़ना चाहे वो मोड़ सकती है अभ्यास के द्वारा। जैसे गीला घास हो और सूखा घास हो, गीला घास को जैसे ही मोड़ना चाहो वे मुड़ जाता है, परंतु सूखे घास को यदि मोड़ना चाहो तो वे टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार बालक यदि भजन करना चाहे तो आसानी से कर सकता है, और बूढ़ा सूख जाने के बाद वह भजन करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए है मेरे प्रिय मित्रों, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता इह, ये भागवत धर्म का पालन कुमार अवस्था से ही करना चाहिए। तो कुमार अवस्था से करने के लिए कह रहे हैं। तो यहां से कुछ लोग कहेंगे हम तो बूढ़े हो गए हैं और यहां पर कुमार अवस्था में ही भक्ति करने के लिए कह रहे हैं, तो हम तो बच गए। प्रहलाद महाराज का कहने का आशय समझना चाहिए। जो कुमार अवस्था में है उसके लिए चाहे कि वह कुमार अवस्था से भक्ति करे, परंतु जो बूढ़े हैं उसे यह सुनकर छूट नहीं जाना है कि अब हमें नहीं करनी है, उसे तो पश्चाताप होना चाहिए, अफसोस होना चाहिए। भय उन विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन, बचपन में भक्ति नहीं की, जवानी में भजन नहीं किया, बुढ़ापा आ गया फिर भी भजन करने के लिए वैराग्य नहीं हो रहा है। प्रहलाद महाराज के कहने का आशय है कि बने उतना जल्दी, जब पता चल जाए कि भजन ही जीवन का सार है, उस दिन से आज और अभी से ही भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। इसके लिए राह नहीं देखनी है कि हम बाद में करेंगे। तो जो बूढ़े हैं उसके पास भी समय है, मरने से पहले, विपत्ति आने से पहले ये भागवत धर्म का पालन कर ले, भगवान का भजन कर। और यदि ऐसा नहीं करते हो तो यह जीवन बहुत बड़ा धोखा बन जाएगा। कहते ना कुछ लोग, क्यों क्यों हम भक्ति करें, हम फिर कभी दूसरे जन्मों में कर लेंगे यदि दूसरा जन्म मिला तो। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यह भक्ति केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकती है, और बहुत 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 करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद यह मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए कहते हैं दुर्लभम मानुष्य जन्म। भजन कर लो क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन कब प्राप्त होता है? 84 लाख योनि में घूमने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पद्म पुराण में वर्णन है, जलजा 9 लक्षाणी, जब जीव भगवान से विमुख होकर इस माया के चक्कर में फंस जाता है तो सबसे पहले माया उसे 9 लाख प्रकार का शरीर पानी में देती है। ये मैं हमारी कथा सुना रहा हूं। 9 लाख प्रकार का शरीर पानी में बदलते हैं, कभी मछली बना तो कभी केकड़ा बना, कभी बिच्छू बना, कभी मगरमच्छ बना, ऐसे 9 लाख प्रकार का शरीर पानी में रहने वाले। और स्थावरा लक्ष्य विशंती 20 लाख प्रकार के पेड़ और पौधे की योनि है। 20 लाख प्रकार के छोटे मोटे पेड़ और पौधे का शरीर प्राप्त होता है। क्रीमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के छोटे छोटे नालियों में जो कीड़े रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे कीड़ों का शरीर प्राप्त होता है। और पक्षी नाम दस लक्षणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी का शरीर प्राप्त होता है। 30 लक्षणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने वाले प्राणी का शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से 80 लाख यह शरीर बदलने के बाद, आप आसान मत समझो, यह 80 लाख जो शरीर है, एक शरीर में कभी कभी 500 कभी कभी 1000 साल भी गुजारना पड़ता है। मनुष्य जीवन के 100 साल भी भारी पड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं वे 500 या 1000 साल तक जीते हैं। और बिल्कुल एक जगह पर खड़ा रहना है, ठंडी हो गर्मी हो सब सहन करना है। पानी में शरीर मिला है तो पानी में ही पड़ा रहना है। तो इस प्रकार से 80 लाख शरीर बदलने के बाद, करोड़ों करोड़ों सालों के बाद, चतुर्थ लक्षणी मनुष्य यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कितना दुर्लभ है यह मनुष्य जीवन। इसलिए यह 5 साल का बालक समझा रहा है, दुर्लभम मनुष्य जन्म, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। और दुर्लभ होने के साथ साथ अध्रुवम, इसका कोई निश्चित नहीं है। मनुष्य जीवन तो मिल गया, परंतु इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम 100 साल तक जिएंगे इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अध्रुवम, कोई निश्चित नहीं है। एक तो यह दुर्लभ है, एक तो बहुत बहुत योनि के बाद करोड़ों करोड़ों सालों के बाद प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद भी यह कभी भी जा सकता है। जन्म लेते ही व्यक्ति मर सकता है। संसार में हम देखते हैं जन्म लेते ही मरने वालों की संख्या बहुत है। और कुछ लोग एक्सीडेंट में बॉम्ब फूटता है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और कुछ लोग नेचुरल बूढ़े होकर मरते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी यह शरीर छूट सकता है अध्रुव। इसलिए जिस दिन यह बुद्धि आ जाए, प्राज्ञ बुद्धि आ जाए, उसी दिन से यह भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। नहीं तो हम यह जीवन हाथ से खो बैठेंगे। और फिर यह जीवन कब मिलेगा? यह 84 लाख के चक्कर को काटने के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद यह शरीर मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा। तब यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्तों का संग हुआ नहीं हुआ, इस कौन रहा नहीं रहा, क्या भरोसा। प्रभुपाद जी की कृपा से, संतों की कृपा से आज हम एक छत के नीचे बैठकर यह भागवत सुन रहे हैं, परंतु यह मनुष्य जीवन गवा दिया। 84 लाख योनि का चक्कर काटने के बाद दूसरा मनुष्य देह मिला, वह मनुष्य देह यदि मुसलमान के घर पर मिल गया तो भजन का कोई प्रश्न ही नहीं है, केवल पाप ही करेगा व्यक्ति। कोई भरोसा नहीं है कि दूसरे जन्म में हम भजन कर पाएंगे। इसलिए आचार्य गण कहते हैं इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति कर लो, अगले जीवन पर मत छोड़ो। हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। तो इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति, और मरने से पहले तुरंत, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। गोविंद दास जी तो गाते हैं, ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर तितरे। आज तुम जो धन के ऊपर अभिमान कर रहे हो, अपने पुत्र को देखकर अभिमान कर रहे हो, पत्नी के साथ रहकर भोग भोगत रहे हो, लेकिन ये कब तक साथ देंगे बताइए? ये जीवन, ये जवानी, ये पुत्र परिजन, ये संसार कब तक साथ देगा? क्योंकि कमल दल जल जीवन तलमल, यह जीवन कमल के ऊपर जैसे पानी की बूंद स्थित रहती है। कब हवा आ जाए और वह पानी की बूंद गिर जाए, बस वैसे ही कब काल आ जाए और यह हमारे जीवन को हर कर चला जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए भजहु हरि पद नीति रे, इसलिए भगवान का भजन तुरंत शुरू कर देना चाहिए। और हमारे रसखान जी भी बहुत ही सुंदर कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली। यह जीवन क्या है? तो कहते क्षण भंगुर की कलिका है। आज यह शरीर सो रहा है, कल सुबह उठेगा या नहीं उठेगा कोई भरोसा है? रात को अटैक आ गया, सुबह उठकर देखा कि ये मर गए। कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कली काकल प्रात में जाने खिली न खिली, मलियाचल की मंद लहर सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता तन कोमल चोट जली न जली, रट ले अरि जीवहा कृष्ण को नाम तू अंत समय पे हिली न हिली। हे जीवहा, अंत समय पे यह जीवा हिलेगी या नहीं हिलेगी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज और अभी भगवान का नाम ले लेना चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम। तो भगवान का भजन मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इसको दुर्लभ समझते हुए भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत आलस करते हैं, बहुत आलसी जानते हुए भी आलस करते हैं, पड़े रहते हैं और यहाँ तक कहते हैं हमें भजन भजन नहीं करना है, हम इस संसार में बस सुख भोगतेंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन आराम करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है। कहते अर्थदम तदप्य ध्रुवम अर्थदम, यह मनुष्य जीवन अर्थ प्राप्त, पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए मिला है। वास्तव में जीव का स्वभाव है सुख प्राप्त करना। इस संसार में 84 लाख योनि में जितने भी जीव हैं, कुत्ता बैल गधा जो भी और मनुष्य, ये सब लोग सुख की खोज में हैं। और ये सुख की खोज केवल मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही पूरी हो सकती है। गधा यदि चाहे कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूं, तो वे गधा वह निर्णय नहीं ले सकता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही व्यक्ति परम नित्य सुख को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य जीवन में ही यह पुरुषार्थ बताए गए। मनुष्य जीवन प्राप्त करके लोग सुख प्राप्ति करना चाहते हैं और सुख प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले धर्म, अब माता का धर्म, पिता का, पत्नी का धर्म, समाज का धर्म, देश का धर्म, ये सभी धर्मों का पालन करते हैं और सुख प्राप्त करना चाहते हैं। पत्नी के साथ रहकर कुछ सुख भोगता है, देश की सेवा करके कुछ सुख भोगता है, परंतु वह पूर्ण सुखी नहीं होता है। तब वह सोचता है कि केवल कोरी सेवा से सुख नहीं मिलेगा, धन भी चाहिए, बिना धन के सुख। तो फिर अर्थ, धर्म अर्थ, फिर वे धन कमाने लगता है। तो धन कमाते कमाते जैसे ही उसके पास धन आ जाता है, तब इस धन को अब कैसे भोगा जाए, तो फिर काम, फिर वह कामना करता है और भोग भोगता है। और वह धन कमाता है, उसे भोगता है, कमाता है, भोग भोगता है, यह करते 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 वह सोचता है कि वास्तव में सुख ये धन में नहीं है, इस पृथ्वी पर सुख नहीं है, सुख तो स्वर्ग लोक में है या सुख ब्रह्म में लीन हो जाना, यह सबसे बड़ा सुख है। तब वे उस ब्रह्म में लीन होने के लिए मुक्ति के चक्कर में फंस जाता है। और उससे भी बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है कि वास्तव में सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना, ये लीन होने से परम सुख नहीं मिलेगा। परम सुख तो वास्तविक मुक्ति का अर्थ होता है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसे मुक्ति कहते हैं। और हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास, भगवान के धाम में उनका दास बनकर रहना, उनकी सेवा करना, ये हमारा स्वरूप। तो जब व्यक्ति यह समझने लगता है भक्तों के संग में आकर, तब वे भजन करता है और भजन करके प्रेम, जो पंचम पुरुषार्थ माना गया है, जो जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है, वह प्रेम के रास्ते में निकल पड़ता है। और भगवान के प्रति प्रेम जब करने लगता है, तब उसे वास्तविक सुख प्राप्त होता है। और भगवान के प्रति प्रेम को ही दूसरे शब्द में भक्ति कहते हैं। तो अर्थदम यह मनुष्य जीवन में ही भगवान को प्रेम किया जा सकता है, भगवान की भक्ति की जा सकती है। क्योंकि भगवान भी हमारे जैसे ही एक आकार स्वरूप वाले हैं, निराकार नहीं है। तो इस मनुष्य जीवन में ही हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़कर नित्य सुख में स्थित हो सकते हैं, ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हैं जिसका कोई एंड नहीं है। आज भी हमें सुख मिल रहा है, परंतु सुख जैसे ही आता है 5 मिनट के बाद चला जाता है, या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा टिकता है, नित्य नहीं है। परंतु भगवान से प्रेम करके, भगवान की भक्ति करके जो सुख मिलता है वह नित्य होता है, और उस सुख में दुख मिला हुआ नहीं होता है। आज जो हमारे पास सुख है उसमें दुख भी मिला हुआ होता है, परंतु भगवान के साथ प्रेम करके, भक्ति करके जो सुख मिलता है वो केवल बिना दुख के केवल सुख और नित्य होता है। इसलिए हे असुर पुत्रों, हे मेरे मित्रों, कुमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष्य जन्म तदप्य ध्रुव मर्थदम। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में, कुमार अवस्था में, इसी जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भागवत धर्म का, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करे, और यदि नहीं करता है तो वह प्राज्ञ, वह बुद्धिमान नहीं है, वह मूर्ख है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपना उपदेश प्रारंभ किए हैं। जैसे ही प्रहलाद महाराज यह कहे, तो मान लीजिए आचार्यगण तो टीका में लिखते हैं, किसी बालक ने खड़े होकर कहा होगा कि प्रहलाद महाराज, आप कहते हो विष्णु की भक्ति करो, विष्णु की भक्ति करो, परंतु हम तो असुर हैं, हम तो असुरों के पुत्र हैं, तो हम असुरों के पुत्र होकर विष्णु की भक्ति क्यों करें? विष्णु हमारा क्या लगता है जिससे हम विष्णु की भक्ति करें? आप हमें बताओ कि विष्णु की भक्ति क्यों करनी चाहिए, उसके साथ हमारा क्या संबंध है? बिना संबंध के कोई किसी से प्रेम करता है भला? हम संसार में देखते हैं कि इस संसार में जो हमारा पुत्र है हम उसे बहुत प्रेम करते हैं, और गांव का बाजू वाले के पुत्र के साथ इतना प्रेम नहीं होता है। अब देखिए, आपका मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, और 6 महीने का बच्चा बाजू वाले के घर में भी किसी का 6 महीने का बच्चा है, दोनों की उम्र एक है, परंतु हमारा प्रेम हमारा जो बच्चा है उसके साथ ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ संबंध है, और पड़ोसी के लड़के के साथ संबंध नहीं है। तो जहां संबंध होता है वहां प्रेम होता है। यदि हमारा बच्चा हमारे कंधे के ऊपर बैठकर सुसु कर दे तो पिता को लगता है कि यह तो गंगा जल के समान पवित्र है। किसी और का बच्चा, कंधे की बात छोड़ दीजिए, ग्राउंड में भी सुसु कर दे तो अरे छीछी ये गंदा है, इसे घर पर लेकर जाओ, पसंद नहीं करता है। संबंध के कारण प्रेम होता है। तो असुर बालक कह रहे हैं कि हमारा संबंध क्या है विष्णु के साथ जिससे हम प्रेम करें? तब प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में कहते हैं कि आपका संबंध विष्णु के साथ क्या है, हम अगले सोमवार को बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अब केवल उपदेश प्रारंभ स्पर्श किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रहलाद महाराज बातें बताएंगे, सुंदर सुंदर इस जीवन में क्या होगा, ये जीवन कितने साल के लिए है, इतने साल में ये होगा, विवाह हो जाएगा तो क्या होगा, बहुत कुछ बताएंगे। तो आप सबसे निवेदन है प्रति सोमवार को 8 बजे या 8:30 बजे आ जाइए, ताकि हम 9:30 बजे खत्म कर सके और जल्दी घर जाकर सो सके। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ये हमारी परंपरा है, प्रवचन के बाद प्रश्न। क्या क्या? किसके ऊपर? नरा, नराधम व्यक्ति के ऊपर, नरों में जो अधम है उस पर दया कैसे करते हैं? उसे भक्ति प्रदान करके, भक्त जो होते हैं वे दूसरों को वाणी के द्वारा, ऐसा नहीं कि उसको 50,000 रुपये जेब में डाल देगा, दया कर दिया। साधु जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, उपदेश देकर वाणी से सपोर्ट करते हैं, शब्द से, और शब्द ब्रह्म के द्वारा कानों से वो हृदय में उतरता है और उसका हृदय परिवर्तन करते हैं। तो शुद्ध भक्त अपने उपदेश के द्वारा दूसरों पर दया करते हैं। इसलिए हम जब भक्तों के पास जाते हैं तो यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वह हमें सुनाए, और कोई अपेक्षा नहीं। संसार के लोग जो होते हैं, आप कुछ फल दे दीजिए मंत्र मार के ताकि हमारा ये ठीक हो जाए, और ये सब अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। ये तो भौतिक अपेक्षा है, शब्दों से परिवर्तन होता है। और कोई प्रश्न है? इसका अर्थ आपको सब समझ में आ रहा है। तो मैं सोच रहा था कि उपदेश तो यूथ के लिए है, और यहाँ पर हमारी तरह सब लोग आधी उम्र पार कर चुके हैं, परंतु आज कुछ नए लोगों को देखकर आनंद आ रहा है कि उपदेश को ग्रहण करने वाले भी हैं। हरे कृष्णा। आप लीजिए।
हरे कृष्णा। जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि जो भक्त होते हैं वो दूसरे को अपनी वाणी से कृपा करते हैं, उसी प्रकार हम देखते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कि प्रभु जी जो है वो हमारे लिए इतना दूर से आकर इतना कष्ट उठाकर, जो कि रेलवे ट्रेन का ट्रैवलिंग नहीं करते, लेकिन हमारे लिए ट्रेन में आकर यहाँ पर प्रवचन अपनी वाणी देकर हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी दया और हमारे आशीर्वाद हम पर बने रहे और उनकी भक्ति बढ़ती रहे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और यहाँ पर जो कुछ भक्त हैं, जो यूथ है, आज पहली बार आए हैं, तो उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से हमें काफ़ी आनंद आया कीर्तन में और इस कार्यक्रम में। तो हमारी अपेक्षा है कि जो यहाँ पर यूथ है, यहाँ पर नित्य आकर हमें सहयोग दिया करेंगे, तो उनके लिए भी हम सभी श्रोताओं के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे।